हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वो झलक का ये रूप देखकर हैरान भी था और बेहद इम्प्रेस भी। उसकी आंखों में झलक के लिए गर्व साफ दिखाई दे रहा था। झलक यहीं तक नहीं रुकी थी। झलक पहले से कहीं ज्यादा परफेक्ट हो चुकी थी। उसके सामने किसी के लिए भी ज्यादा देर तक टिक पाना आसान नहीं था। वो बड़े बड़े आदमियों को एक ही झटके में जमीन पर गिरा रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि किससे कैसे निपटना है। हर ट्रिक, हर मूव उसे याद थी और उनका इस्तेमाल करते हुए वो गुंडों को पूरी तरह धूल चटा रही थी। सबकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, जो गुंडे अभी कुछ देर पहले गलत गलत नीयत से बातें कर रहे थे, वही अब दोनों के सामने हाथ जोड़कर बैठे थे। किसी के मुंह से खून निकल रहा था, किसी के दांत टूट चुके थे। वे बदहवास हालत में माफी मांग रहे थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने ये सुपारी लेकर गलत किया। प्लीज दीदी, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो दीदी, ये बोलते हुए गुंडे कराहने लगे थे। लेकिन झलक और अनामिका ने उन्हें इतना मार दिया था कि उनकी सारी अकड़ निकल चुकी थी। फिर झलक ने तुरंत एक कॉल किया। झलक की पूरी फास्ट सिक्योरिटी टीम कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गई। झलक ने शांत स्वर में कहा, यहां से सारा कचरा साफ कर दो। ये सुनते ही काज ने फटाफट उन लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। उधर अनामिका गुंडों की धुलाई करने के बाद काफी हल्का महसूस कर रही थी। वो तुरंत झलक के गले लग गई और बोली, थैंक यू सो मच झलक, तुम नहीं जानती मुझे कितना अजीब लग रहा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, लेकिन सबकी धुलाई करने के बाद दिल को सुकून मिला है। सच में ये तो बढ़िया इलाज है मेरा। अब जब भी मैं फ्रस्ट्रेटेड हुआ करूंगी तुम्हें बोलूंगी और हम ऐसे ही किसी की पिटाई कर दिया करेंगे। जैसे ही अनामिका ने ये थोड़ी तेज आवाज में कहा, कबीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। वहीं बलवीर जी जोर जोर से ताली बजाते हुए बोले, ब्रावो ब्रावो मेरे बच्चों, आज तक मैंने डली सहमी लड़कियां देखी थीं, लेकिन आज जिस तरह तुम दोनों ने गुंडों को धूल चटाई है वाकई मानना पड़ेगा। दिग्विजय ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम्हें इतना मजबूत बनाया है कि मुझे तो अब किसी बेटे की जरूरत ही नहीं लगती। अगर हर घर में तुम्हारी जैसी बहादुर बेटी हो जाए तो माता पिता की आधी चिंता वैसे ही खत्म हो जाए। आदित्य तुरंत झलक के पास गया और पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। झलक ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से बोतल ली और अपने चेहरे पर पानी डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पानी की बूंदें झलक के चेहरे पर गिर रही थीं, वो और भी ज्यादा चमक रही थीं, मानो सुबह की ओस हरी घास पर चमक रही हो। आदित्य का गला सूखने लगा। उसका दिल कर रहा था कि झलक को अपनी ओर खींच ले, उसे कसकर गले लगा ले और इतना प्यार करे कि कोई उसे उससे दूर ना कर सके। तभी अनामिका ने आदित्य को कोहनी मारी और धीरे से कहा, अपनी फिल्मी इमोशन पर कंट्रोल रखो, इतनी तेज मत सोचो कि आसपास के लोगों को सुनाई देने लगे। झलक ने अनामिका की बात सुन ली और हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर वो और अनामिका दोनों बलवीर जी के पास गईं और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। कबीर और अभय अभी भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन बलवीर जी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने पूछा, बेटा ये लोग आखिर थे कौन? तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की और ये तुम्हें मारने क्यों आए थे? झलक ने शांत लेकिन ठोस अंदाज में कहा, ये दुश्मनों के भेजे हुए आदमी थे। अब चिंता मत कीजिए, हमने इन्हें अच्छा सबक सिखा दिया है। आज के बाद ये कभी किसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। झलक की बात सुनकर दादाजी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने गर्व से कहा, बेटा तुम्हारे पास इतनी ताकत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हर घर में तुम्हारी जैसी बेटियां हों तो समाज में बेटियों के साथ होने वाला अन्याय और दुर्व्यवहार खुद बखुद खत्म हो जाएगा। झलक मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच दादाजी आपके प्यार के लिए। फिर उसने कहा, आप लोग घर चलिए, हम बाइक से आते हैं। ये कहकर झलक ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। आदित्य का दिल तो चाहता था कि वो यहीं रुक जाए और झलक के साथ रहे, लेकिन वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में अनामिका और झलक अपनी बाइक पर सवार होकर उनके ठीक आगे आगे घर की ओर निकल चुकी थीं। जैसे ही वो घर गईं, अनामिका ने झलक को देखकर कहा था, यार मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं जाकर थोड़ा सा फ्रेश होकर आती हूँ, वैसे भी गेस्ट आ रहे हैं। जल्दी से जैसे ही अनामिका ने ये कहा, तभी दिग्विजय जी ने उन दोनों को घूरते हुए पूछा था, क्या हुआ, उनमें से कोई जिंदा है या सभी को मार डाला? जैसे ही दिग्विजय जी ने ये कहा, अनामिका हैरानी से बोली थी, दादाजी आपको कैसे पता चला हम लोग कहाँ गए थे? तभी दिग्विजय जी ने हल्की सी अपनी मूछों पर ताव देते हुए कहा था, अरे भाई मेरी पोतियां हो तुम, और कब क्या कर सकती हो और क्या कर रही हो उसके बारे में मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। हाँ, तभी आरव जी वहां आए थे और झलक को देखते हुए बोले थे, लेकिन बेटा तुम्हें उन लोगों में से किसी एक को जिंदा छोड़ देना चाहिए था, ताकि वो जाकर तुम्हारी बहादुरी के किस्से खुद अपनी जुबानी उन दोनों परिवारों को सुना सके। तब झलक ने शांत स्वर में कहा था, फिक्र मत करिए, उन तक क्या खबर पहुंचेगी और क्या नहीं इसका इंतजाम हो गया है। उसके बाद झलक सीधा अपने कमरे में चली गई। तभी तक बालवीर जी रास्ते में आदित्य को गहरी नजरों से देखकर बोले, पता लगाओ आखिर कौन है झलक बेटी के पीछे। याद रखना आदित्य, वो लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए। वहीं आदित्य तो मन ही मन ठान चुका था कि वो सारा सच जानकर रहेगा। आखिर कहीं ये उस खुराना परिवार के भेजे हुए गुंडे तो नहीं? वहीं कबीर ने अभय के कानों में सारगोशी करते हुए कहा, भला इन पावरफुल दादा पोते को उन मल्होत्रा सिस्टर्स के लफड़े में घुसने की जरूरत ही क्या है? देखा नहीं उनकी फाइटिंग स्किल? अरे वो तो बड़े बड़े योद्धा को भी पटक सकती है। कहीं ना कहीं एक बार फिर उनकी आंखों के सामने झलक और अनामिका की फाइटिंग घूम गई थी और दोनों को हाथ का रोंगटा खड़ा हो गया था। फिलहाल तब तक वो लोग मल्होत्रा हाउस आ गए थे और आते ही सबसे गर्मजोशी से मुलाकात करने लगे थे। आदित्य राणा चारों तरफ देखने लगे थे और सोचने लगे थे कि झलक कहाँ चली गई, अभी तो यहीं थी, सामने क्यों नहीं आ रही है। वहीं झलक अपने कमरे में जाकर सीधा शावर लेने लगी। उसने आज अपने बाल खुले छोड़ दिए थे, फटाफट उसने कैजुअल कपड़े पहने। आज उसने हल्के ब्लू रंग की शर्ट पहन ली थी और साथ ही नीचे कैजुअल सा लोअर डाला था। घर में फिलहाल वो अपना फोन लेकर नीचे जाने लगी थी। वहीं दूसरी ओर धीरज गुस्से से अपने बेटे को देख रहे थे और बोले थे, ये क्या किया तूने नालायक, आखिर क्यों गया था तू वहाँ? उस लड़की की खूबसूरती का नशा तेरे सिर से नहीं उतरता, उसकी खूबसूरती में पागल होकर तू वहाँ चला गया, आखिर तू ऐसा कैसे कर सकता है? अगर खुराना और ओबेरॉय परिवार ने मिलकर कुछ कर दिया तो क्या अंजाम हो सकता है? हमें पता तक नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ गायब हो गए, कुछ समझ रहे हो हमारी बात? ये बोलकर धीरज जी लगातार अपने बेटे को डांटते रहते थे। चार दिन हो चुके थे और उनका यही किस्सा रोज का हो चुका था। वहीं आर्यन अभी भी हैरानी में डूबा हुआ था और सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि झलक से की गई सीक्रेट मुलाकात इस तरह से सबके सामने आ जाएगी। वो तो झलक के पास जाकर एक बार फिर से अपनी दोस्ती का झांसा देना चाहता था और उसके साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसकी इस तरह बेइज्जती हो जाएगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे डर था कि सबके सामने उसका नाम आ जाएगा। ओबेरॉय और खुराना परिवार को ये लगने लगेगा कि झलक के साथ जो भी हुआ उसके पीछे आर्यन का हाथ था, जबकि आर्यन तो वहां खुद उससे मिलकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए गया था।
लेकिन उसे क्या पता था कि बात इस तरह परिवारों की नजरों में आ जाएगी। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। 3 से 4 दिन हो चुके थे और वो हर रोज घर में बातें सुन रहा था, क्योंकि ओबेरॉय और खुराना परिवार ने अभी तक आर्यन को क्लीन चिट नहीं दी थी। इतना ही नहीं, उन दोनों कंपनियों के साथ जो रायचंद परिवार के कॉन्ट्रैक्ट होने वाले थे वे भी बीच में लटका दिए गए थे, तो धीरज को एक अलग ही तरह का डर सता रहा था। वहीं मीरा ने अपने भाई को रोकते हुए कहा था, सीरियसली आर्यन, समझ में नहीं आता कि उस लड़की ने तुम्हारी आंखों पर कैसी पट्टी बांधती है कि तुम पूरी तरह उसके पीछे पागल हो गए हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने हमारे परिवार की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुम्हें उस लड़की का अतीत भी पता है और फिर भी तुम उससे मिलने के लिए जा पहुंचे? वो पहले से किसी की बीवी रह चुकी है और शादी से पहले भी किसी के साथ रह चुकी है। उस लड़की का कोई कैरेक्टर नहीं था और फिर भी तुम उसी के लिए इस हद तक चले गए, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कहीं न कहीं मीरा ने बहुत ही कड़वे और तीखे शब्दों में उससे बातें करना शुरू कर दिया था।